आगे कुछ बातें हजरत लुकमान की हिकमतों वाली बातें हैं, जिससे इजहार होता है कि वाकई अल्लाह ताला ने लुकमान को हिकमत दी थी। उसको शुरू करने से पहले आयत के आखिरी हिस्से पे हल्की सी तवज्जो दिलाऊंगी कि फ़इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफ़ किया गया। उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोई उसकी तारीफ़ करे। कोई कुफर करता है अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, कोई शुक्र करता है अल्लाह को फ़ायदा नहीं। इस पे एक हदीस कुदसी भी है जिसका खुलासा क्या है कि अगर सारी दुनिया के इंसान अल्लाह को एक मानने लग जाएं, उसकी इबादत करें, तो अल्लाह की बादशाहत में ज़रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। कोई वोटों से थोड़ी है अल्लाह की कुर्सी। और इसका अपोजिट भी है, अगर सारे जिन्नों इंस अगले पिछले अल्लाह की नाफरमानी कर लें, तो अल्लाह की सल्तनत उसके गलबे में हल्का सा भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आयत नंबर 13 शुरू होती है और 19 तक एक खुतबा है, एक नसीहत है। हर बात में बहुत कुछ है सीखने को, बारीक बातों को बाद में करेंगे। आप बस इसको ये समझ लें कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, कौन सी चीज़ पहले कौन सी बात, ये यहाँ आपको दिखेगा। अगर बीच में बहुत लंबी बात हो जाती है तो बाज़ दफ़ा फिर वो जहन के अंदर जो एक नक्शा बनता है वो नहीं है। तो लिहाजा मैं हल्की हल्की वजाहत के साथ आयत नंबर 13 से 19 तक की बातें सामने रखती हूँ। आपने इनको इस तरह से सुनना है कि बच्चों को सबसे पहले किस बात से रोकें, किस बात का हुक्म दें और पहले क्या और बाद में क्या। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह इस काल लुकमानो, और जब कहा लुकमान ने, किसको कहा, लिबनी ही, अपने बेटे को। लफ्ज़ इबन बड़ा खूबसूरत है, लिबनी ही। बस कहते हैं कि इनके इस बेटे का नाम अनम था, अलिफ नून आइन मीम, अनम या अशकुर नाम था उनके बेटे का। और इबन का लफ्ज़ जहाँ ओ मेरे छोटे बेटे, ओ मेरे प्यारे बेटे के मानों में आता है, जैसे किसी को आप बड़े प्यार से बुलाएं तो जो अंदाज होता है। उन्होंने अपने बेटे से बात की। इससे पहली बात तो ये पता चलती कि माँ बाप को खुद बराह रास्त अपने बच्चों की इसलाह करनी चाहिए। बस माँ बाप खुद नहीं कहते, खुद तो बड़े अच्छे बने रहते हैं और आंटी और अंकलों की जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप इसको समझाएं। नहीं समझेंगे, वो आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप उनको खुद समझाएं, आप उनकी बात लें। तो लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वहुवा याइज़ुहु, जबकि वो इसको नसीहत कर रहा था। याइज़ु का लफ्ज़ वाज से है और वाज कहते हैं दिल में उतरने वाली बात को। किसी को अच्छी बात इस अंदाज में बताना कि दिल पर असर हो। पूछिए, सोचिए, खुद से सवाल करें, क्या हमारी नसीहतें बच्चों के दिल पे जाती हैं या सिर्फ कानों से टकराती हैं? बस मैं इतना चीख चीख के बच्चों को बता रही होती हैं कि वो गरीब बच्चे डर जाते हैं कि अम्मी को हुआ क्या। नरम बात करें, आसानी की बात करें, वो इतनी बड़ी बातें नहीं सुन सकते, इतनी बड़ी बातें समझ नहीं सकते। अब यहाँ एक छोटी सी बात है कि नसीहतें तो सारे ही माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, लुकमान की बातों को अल्लाह ने कुरान में क्यों पेश कर दिया? तो इसकी वजह क्या है कि साहिब हिकमत शख्स थे ना, उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की। और बच्चे से ज़्यादा इंसान किसी से मुखलिस नहीं होता। रिवायात में आता है कि कोई इंसान दुनिया के हर बंदे को धोखा दे सकता है, अपनी औलाद को नहीं देता। लिहाजा जो नसीहत कोई अपने बच्चे को कर रहा है, फिर यकीनन वो अच्छी होगी। यानी बेटे का लफ्ज़ बोल के यहाँ तवज्जो दिला दी गई कि ये धोखे वाली बातें नहीं, ये मुनाफ़क़त की बातें नहीं है। बुरे से बुरा इंसान भी अपने बच्चे को अच्छी बात की नसीहत करता है। और लुकमान चूँकि हिकमत पे थे, लिहाजा उन्होंने रखी बात। ये है पहली वजह, यानी औलाद के हक़ में बंदा बहुत संजीदा होता है और सिंसियर होता है। दूसरी एक और मुनासबत है यहाँ लुकमान की अपने बेटे की बात को पेश करने की, और वो क्या है कि पीछे बात की कि कुफारे मक्का लुकमान के सहायफ को रखते थे, इसको अपनी बड़ी कौमी शख्सियत या मिली शख्सियत समझते थे। इसके बावजूद वो हालात आ चुके थे जब ये सूरतें नाजिल हुई कि माँ बाप अपनी औलादों को دین پہ آتے ہوئے تکلیفیں دیتے تھے. سورۃ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں سعد بن ابی وقاص کا قصہ. اللہ کے نبی کی دعوت توحید سے منہ موڑنے پر مجبور کر رہے تھے. کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا, کس کی باتوں پہ آ گئے ہو, کس کی کہانیوں میں لگ گئے ہو. لہٰذا ایسی باتیں کرنے والوں کو لقمان کی بات سنائی جا رہی ہے کہ جا تو تم لقمان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو, یا پھر اپنی اولادوں کو دین کے تانے دینے چھوڑ دو کہ تمہارا دین بدل کیوں رہا ہے. ظاہر انسان جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو پھر اس کی بات کو بھی تو بڑا سمجھتا ہے نا. تو لہٰذا یہاں ان کی بات کر دی گئی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھو کیا کرو. یا بنیا, اے میرے بیٹے, لفظ بنیا جو ہے نا یہ تصغیر ہے. آپ آگے جا کے انشاءاللہ گرامر میں اسم تصغیر پڑھیں گے. تصغیر کے لفظ میں صغرا کا لفظ, صغیر کا لفظ چھپا ہوا دکھے گا, چھوٹی چیز. صاغرین بھی ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں, لاڈ میں, پیار میں بڑی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں. مثلا کسی کو کہنا ابن یا بن ہوتا ہے جب دو کے بیچ میں لفظ آتا ہے, تو یا ابن کی بجائے یا بنیا کہہ کے, یہ ایسے جیسے ہمارے ہاں بچے سے بچونگڑے کا لفظ کہہ دیتے ہیں. او میرے چھوٹے بیٹے, پیار کا انداز ہے, یہ پہلی چیز ہے. ہم جب اپنے بچوں کو نصیحت کے لیے بلاتے ہیں نا تو پیار سے نہیں بلاتے, عقل مندی ہے یہ, پیار سے بلائیں. ہم کہتے ہیں سر پہ چڑھ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ نصیحتیں جو کی جا رہی ہیں یہ گود کے بچے سے نہیں کی جا رہی, باشعور انسان سے کی جا رہی ہیں. پتہ کیا چلا کہ جس طرح چھوٹے بچے کے لاڈ کرتے ہیں نا, وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کے لاڈ ویسے ہی کریں. پیار کے انداز, تو انداز تخاطب پہ غور فرمانے کی ضرورت ہے. دوسری بات, بات کیا ہے, لا تشرک باللہ, یہ ہے پہلا نقطہ کہ بچوں اللہ کے شریک نہ بنانا. اور صرف روکا ہی نہیں, وجہ بھی بتا دیا, اب عمل کے نقطے خود ہی لکھتے جائیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے بچوں کو جوڑنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور سب سے پہلی چیز جو بچوں کی زندگی سے نکالنی ہے نا وہ شرک ہے. اور وہ شرک صرف بتوں کا یا پتھروں کا نہیں ہے, وہ کھلونے بھی شریک ہو سکتے ہیں اللہ کے, اور وہ ان کی ہر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جن کو نمازوں سے اور اللہ کے حق کرنے سے روکے. اور ساتھ ہی اگلا عمل کا نقطہ ہے کہ وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہ شرک کرو. ہم کہتے بس کہہ دیا نا, میں نے کہہ دیا, چپ, زیادہ سوال نہ پوچھو. نہیں, وجہ بتائی, ان الشرک لظلم عظیم, شرک نہ کرو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور لفظ ظلم کمی کے لیے آتا ہے, کسی کے حق میں کمی کرنا, نقص. ود شیئن فی غیر محلہ, چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا, شرک سے روکا. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو شرک سے روک چکے. ہم تو بات ہی شروع کرتے ہیں اپنے حقوق سے, ہم تو ایتھکس سکھاتے ہیں پہلے, ہم تو بس مینر سکھانے کو دین سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز بچوں کو اللہ کی قدر کروائیں. حکمت والے تھے, پیار سے بلا رہے تھے. ہم پیار سے نہیں بلاتے کہ یہ خود عقل مند ہیں, ان کو خود سمجھ ہونی چاہیے, خام خواہ بچوں والے لاڈ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ بچوں والے لاڈ, غلط کہتے ہیں یہ. پھر آپ دیکھیے کہ شرک سے پہلے لفظ ان شرک اور ظلم سے پہلے لام لگی, یہ دونوں شدت ہے. ادھر انا میں بھی ایگزیجریشن ہے اور ظلم سے پہلے لام میں بھی تاکید ہے. تو وجہ بتائے بغیر نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے. شرک کا لفظ ہی پہلے دیکھ لیں کہ شکر نہیں ہے تو شرک ہے, وہی لفظ ہیں, صرف روٹ ورڈ بدل دیں, شین کاف را کی بجائے شین را کر دیں. ملانے کا معنی ہوتا ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں نا شراکت, پارٹنر, شریک. خالق کو مخلوق سے ملانے کو شرک کہتے ہیں. عموماً تین طرح سے ہوتا ہے, الوہیت میں شرک, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنانا, مثلاً دوسروں سے دعائیں مانگنا, سجدہ کرنا, نظر و نیاز دینا. دوسرا شرک ہوتا ہے اسماء و صفات میں شرک, نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں, اللہ والی صفات, اللہ والے نام دوسروں کے رکھنے. قرآن میں آتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اللہ کے بہترین نام ہے اس کو انہیں کے ذریعے پکارو. مثلاً کسی کو عبد الشافعی کہنے کی بجائے خالی اس کو الشافی کہنا, ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, نام اچھے رکھیے. आप देखिए कि अल्लाह के नाम रखने हैं तो उसके साथ थोड़ा सा एहतियात का तकाजा ये होता है कि अब्द का लफ्ज़ लगाया जाए। बहरहाल इस वक्त हम डिटेल पे बात नहीं करेंगे। तीसरा शिर्क होता है रबूबियत में शिर्क। मक्का वाले रबूबियत में नहीं शिर्क करते थे, यानी रबूबियत में शिर्क है कि फ़लाँ ने ज़मीन आसमान बनाने में अल्लाह की मदद की, बल्कि क्या करते थे, अलूहियत और सिफात में शिर्क करते थे। पीछे हम पढ़ चुके हैं, मन खलक समावाती वालर्थ, पूरा रुकू इस तरह से चला था, अल्लाह के सिवा दूसरों से मन्नतें मांगते, नजरे न्याजे मांगते, सजदे करते और उन्हीं से औलादे वगैरह मांगते। अब सवाल पैदा होता है कि क्या बंदा अगर किसी दूसरे पर रहम करता है, कोई अच्छा मामला करता है, तो क्या ये शिर्क है? मसलन आप किसी के साथ अच्छे बनते हैं, तो क्या फिर ये अल्लाह की रहमत या अल्लाह के अर्रहीम और अर्रहमान होने में शिर्क है? तो ऐसा नहीं है। हम ये कहेंगे कि अर्रहमान और अर्रहीम ने बंदों के दिल में रहम का जज्बा डाला और उन्होंने हम पे रहम किया। अल्लाह की रहमत कामिल है, बंदों की नाकिस है, और कामिल और नाकिस का कोई जोड़ नहीं होता। तो लिहाजा इसी तरह मालिक किसी को मालिक कह सकते हैं, अल्लाह की सिफत मालिक है, वो मुकम्मल मलकियत है, मलकियत है तामा, और बंदों की मलकियत है, मलकियत है नाकिसा, अधूरी है। तो जिस चीज़ का बंदा पूरा मालिक नहीं, फिर वो उसके अंदर इख्तियार कहाँ रखेगा? पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 18 नबियों का तذکرہ करके अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वलैन अशरकता, अगर ए नबी आपने भी शिर्क किया, और अम्बिया कराम के तذکرے में कहा कि अगर वो शिर्क करते तो हम उनके अमल ज़ाया कर देते। और ये जो लफ्ज़ है ना वसीयत, आगे आ रहा है उसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ तक अब अगर हल्की सी बात कर लें कि हमारे यहाँ जिस मौजू पे बहुत कम बच्चों को बताया जाता है वो अल्लाह की ज़ात है। एक माँ ने मुझे पूछा कि बच्चे ने स्कूल के होमवर्क में से एक सवाल पूछा है मुझसे, और आप मुझे ज़रा बता दें कि मैं इसका जवाब सही नहीं जानती। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इसके रेगुलर स्कूल से सवाल आया है, मुझे समझ नहीं वैसे आई उस बात की। तो मैंने कहा इस्लामी सवाल स्कूल में? कहती हाँ कभी कभी वो अपने स्कूल में कुछ स्पीकर्स को बुलाते हैं, मुस्लिम स्पीकर्स को भी, तो वो जो बातें बताते हैं उस पर बच्चों को असाइनमेंट मिलता है। वल्लाही जो सवाल पूछा माँ ने, मेरा तो दिल बैठ गया। मैंने फिर पूछा यही बात है? कहती जी। मैंने कहा आपको पता है ये किसके अफकार है? अब नाम याद नहीं लेती ना सवाल बताती हूँ, लेकिन कांप के रह गई। फिर मैंने जब उनको बताया कि ये तो ये मुसलमान थोड़ी, ये तो मुसलमानों का एक खास सेक्ट है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये तो उनकी बात है। कहती हाँ तभी मुझे भी लग रहा था कि मैंने नहीं ये बात कभी पढ़ी सुनी, तो अच्छा वो मैंने आपसे पूछ लिया। हैरत मुझे इस पर भी कि माँ को खुद नहीं पता, और बच्चा जवान है उसको खुद नहीं पता, और वो सिर्फ असाइनमेंट करने के लिए मुझसे उन्होंने सवाल पूछा। मैं लरस के रह गई कि क्या क्या जहर नहीं घोला जा रहा हमारी नस्लों के जहनों में। आप कभी खुश होते होंगे हमारे बच्चों के स्कूल में कोई इस्लामी प्रोग्राम हो रहा है, खुद जाया करे फिर देखे वो किन को बुलाते हैं। वो उनको ही बुलाएंगे जो उनके नज़रियात की तस्दीक करेंगे। आज जाके ज़रा बात कीजिएगा बच्चों से शिर्क के बारे में। छोटे बच्चे को माँ सिखा सकती है खाना किसने दिया, देखिए प्यार से बच्चों के अंदाज से उनसे बातें करें। आजकल तो ऐसी बुक्स ही इतनी प्यारी आती हैं, हर चीज़ मुझे लगता है मैसअप हुई हुई है इस वक्त। जैसे एक ड्रॉ में हर चीज़ डाल दें, वक्त पे कुछ नहीं मिलती, जो टुकड़ा हाथ लगता है लोग उसी को दीन समझते हैं। नहीं, पहली चीज़ शिर्क से दूर रखें, हर उस चीज़ से दूर रखें जो उसको अल्लाह से दूर करे। दूसरी चीज़ अब ववस्सैना लिंसान बिवालिदैही, और हमने ताकीदी हुक्म दिया इंसान को कि अपने वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे। वालिदई जो था ये वालिदैन था, दोनों वालिद माँ और बाप मुराद है। और वसीना का लफ्ज में वसीयत है, वसीयत कहते हैं किसी वाक्य के पेश आने से पहले किसी को बता देना, और ये खैर ख्वाही पर मुश्तमिल होती है। यहाँ नहीं बताया गया कि क्या वसीयत की गई, बिल वालिदैनी क्या, लेकिन पीछे हम पढ़ चुके सूरह बनी इसराइल में एहसाना, एहसान की वसीयत की गई। नोट कीजिएगा कि पीछे बात थी लुकमान की, ब्राहे रास्त या बुनैया था, यहाँ नहीं कहा या इबन या बुनैया। क्यों? इसकी फिर दो वजूहात दी जाती हैं। नंबर एक, बास कहते हैं कि चूंकि मामला माँ बाप का आ रहा था, तो तो अगर वो खुद अपनी तरफ निस्बत लेते तो बच्चा शायद ये सोचता कि माँ बाप मुझे अपने हकूक के लिए कह रहे हैं। बस कहते हैं कि ये कॉल है लुकमान का ही, लेकिन स्टाइल ऐसा कह दिया कि जिससे डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट कहा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आप अपने ही बच्चे को कोई बात कहे तो वो शायद ये ना सोचने लग जाए कि आप उसको अपने हकूक पे दर्स दे रहे हैं, इसलिए अल्लाह की तरफ निस्बत है। और बस कहते हैं कि नहीं, ये जुमला बीच में अल्लाह ताला की तरफ से है। हज़रत लुकमान की नसीहतों के बीच में अल्लाह ताला ने एक ताकीदी हुक्म दे दिया, और वो क्या है कि जब माँ बाप अल्लाह की तरफ लेके जा रहे हैं तो अल्लाह कहता है कि अब तुम भी माँ बाप के साथ अच्छे बनो। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जो माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ते हैं ना, अल्लाह खुद ब खुद उन बच्चों के दिल में माँ बाप की कदर डालता है। आजमा के देख लें, 1 साल पहले आप जब कुरान से या इस किताब से डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, अब अल्लाह ने आपको जोड़ दिया, क्या अब आपको अपने माँ बाप की ज़्यादा कदर आती है? ईवन अगर वो गलती पे भी हैं, ईवन अगर उन्होंने आपको कुछ नहीं सही तरह से पाला, फितरी बात है कि जितनी कदर दीनदार औलाद को अपने माँ बाप की होती इतनी किसी की नहीं होती। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम कहते हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी बात मानो, बात की दोनों की, हकूक की अदायगी दोनों की, एहसान दोनों से, लेकिन कुर्बानियों का तذکرہ हुआ तो माँ की हो गया कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, के पेट में उठाए रखा उसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोरी के बावजूद। वहनन अला वहन क्या है? हमल से लेकर दूध पिलाने तक की कमजोरियां, एक कुर्बानी, एक कमी, शुरू के दिन और तरह के, बाद के और, 9 महीने की सारी मुश्किलात। आप देखिए कि औरत फितरी तौर पे कमज़ोर हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, कमर में दर्द है, बाज़ दफ़ा नज़र कमज़ोर हो जाती है, रूहानी कमज़ोरी है, नमाज सही नहीं पढ़ रही, रुकू नहीं कर रही, सजदा नहीं कर रही, खून की कमी है, और जितनी प्रेगनेंसी आगे जाती जाती है कमज़ोरियाँ बढ़ती जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस माँ ने तुम्हें पेट में रखा, तलाश करके देखे तो आपको कितनी कमज़ोरियाँ मिल जाएंगी। और दूसरा मसला, व फिसालहु फी आमैन, और उसका दूध छुड़ाने में लग गए 2 साल। फिसाल का लफ्ज़ फसला से है, फा स्वाद लाम, वसल का ऑपोजिट है छुड़ाना, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। अगर वो दूध छुड़ाने का इरादा करें, इशारा है इधर दूध छुड़ाने का। आमैन आम का तस्निया है, आम आम नहीं, आम 2 साल। आम कहते साल को, जैसे आमुल फील या आमुल खुजन का लफ्ज़ हम पढ़ते हैं। और 2 साल दूध छुड़ाने में लगे। अब ये देखिए कि 2 साल दूध छुड़ाने में लगे, इससे भी पता चल गया कि बच्चे को 2 ही साल दूध पिलाने हैं। और पीछे भी हम पढ़ चुके, वल वालिदात युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, सूरत बकरा की आयत नंबर 233 में आता है कि माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाएँ 2 महीने, 2 साल तक। फिर आगे हम पढ़ेंगे इस मौजू को थोड़ा सा और जाके सूरत अलअहकाफ़ की आयत 15 में कि वह हमलहु व फिसालहु सलासून शहरा, के पेट में रखना और दूध पिलाने की कुल मुद्दत जो है ये 30 महीनों में। तो बहरहाल यहाँ आमीन से 2 साल मुराद है कि दूध पिलाओ। डिटेल्स हम पीछे कर चुके, फ़र्ज़ है कि नहीं, कब करें कब ना करें, लेकिन बहरहाल मौजूद है। अब क्या हुआ, करो क्या? अनिशकुरली, इसलिए हमने ये हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो, वली वालिदई का, और अपने वालदैन का, इलैयल मसीर, आखिरकार मेरी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। माँ बाप के हक तो बता दिए, अच्छा मामला तो रखना है, लेकिन याद रखो, व इन जाहदा का अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, और अगर वो दबाव डालें तुम पर कि तुम मेरा शरीक ठहराओ किसी को जिसका तुझे इल्म नहीं, तो फिर इनका कहना ना मानो, फला तो देखुमा, इनका कहना ना मानो। लेकिन कहना ना मानने का मतलब बदतमीज़ी नहीं, बल्कि इसके बावजूद कि वो तुम्हें शिर्क पे मजबूर कर रहे हैं, कुफर से तुम इस्लाम पे आ गए हो, माँ बाप अभी कुफर पे हैं, या तुम शौरी मुसलमान बन गए और माँ बाप अभी रिवाजी मुसलमान है, ये सारा फ़र्क अपनी जगह, लेकिन वसाहिब हुमा फि दुनिया मारूफा, और उनके साथ अच्छे रहो इस दुनिया के मामलात में, उनके हक दो, उनके काम करो, उनकी बातें जहन में रखो। वही याद रखिए, साथ भी नबी वकास, वो कहते हैं कि ये आयत भी मेरे बारे में नाजिल हुई, मैं अपनी वालदा का बड़ा फर्मा बरदार और इतात गुजार था, उनकी खिदमत करता, कोई कसर ना छोड़ता। फिर अल्लाह ने जब मुझे नेमत ईमान से मुशर्रफ किया तो मेरी माँ सख्त गुस्से में आ गई, कहने लगी, ऐसा तुमने ये क्या हरकत की? अगर तूने इस नए दीन को ना छोड़ा तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी, यहाँ तक कि मैं मर जाऊंगी और लोग तुझे अपनी माँ का कातिल कहकर आर दिलाएंगे और तू मुल्क भर में रुसवा होगा। मैंने कहा, अम्मा ऐसा ना करो, मैं किसी कीमत पर अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बजिद रही, दिन भर कुछ ना खाया ना पिया, रात भी यूं ही गुजर गई, जिसके बायस वो कमज़ोर हो गई। दूसरा दिन और रात इसी फाके में उसने गुजारी। अब तो इसकी कमज़ोरी हद को पहुंच गई। जब मैंने इसकी ये जिद देखी तो मैंने कहा, या उम्मा, ऐ माँ, तू जान ले, अगर तेरी 100 जाने होती और सब एक एक करके निकल जाएं, तो खुदा की कसम मैं अपने दीन को फिर भी नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी मर्जी है, खा और ना खा, मैं अपना दीन छोड़ने पर किसी कीमत पर तैयार नहीं। कहते हैं कि मेरा ये अज़्म इरादा देखकर मेरी माँ ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। ये हम समझते नहीं हैं, थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है ऐसे माँ बाप और ऐसी औलादों के साथ। दिल पे पत्थर रखे, हम एक दफ़ा कहते भाग जाओ, खाना नहीं दूंगी, चले जाओ, थोड़ी देर बाद जाके पुचकारते हैं कि आओ बेटा बर्गर बना दूँ, सैंडविच बना दूँ। दिल बड़ा रखे, वो रज़ाक है, मारता नहीं है किसी को। थोड़ा सा लोग जब हमारी कमिटमेंट देखते हैं तो वो खुद भी समझ जाते हैं कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है जो हम इख्तियार कर रहे हैं। तो यहाँ फिर हमें क्या पता चला कि अल्लाह के बाद माँ बाप के हकूक, और उसमें भी इताअत करनी है, खिदमत नहीं। ये जुमला लिख लें, हमारे यहाँ बहुत कम लोग इसका फ़र्क रख पाते हैं कि माँ बाप की खिदमत करनी है, इबादत नहीं करनी। बस एक जुमले में आपको 10 बातें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, कि खिदमत करें, इताअत करें, लेकिन इबादत ना करें। इबादत अल्लाह की, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। माँ बाप के साथ अच्छा मामला रखें। अब माँ बाप के साथ अमली शुक्र कैसे अदा करें? दिल से भी करें, शुक्र करें अल्लाह ने माँ बाप दिया हमें, ज़ुबान से भी इजहार करें, तशक्कुर के जज्बात रखें, और अमल से उनकी खिदमत करें, वो काम करें जो उनको फ़ायदा होगा। हम अपने माँ बाप के बारे में खुद सोच सकते हैं, सारी दुनिया को हम शुक्रिया थैंक यू कहते हैं, माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हुए शर्म आती है, झिझकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इनको तो करना ही था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इनके साथ मामला रखो, और यहाँ जहन में रखिए कि गलत कामों पर नहीं मानना, लेकिन बदतमीज़ी नहीं करना। हज़रत अबू बकर की एक मिसाल मिलती है, उनके वालिद अबू कहाफ़ा कहा करते थे कि अबू बकर, मैं तुमको देखता हूँ कि तुम इतने पैसे खर्च करते हो, मस्कीनों को, ग़ुलामों को छुड़ाते हो, कुछ उनसे अपने काम भी ले लो, यानी चलो छुड़ाओ, बिलाल को छुड़ाया है तो कुछ उसको अपनी ग़ुलामी में रख लो, कुछ तुम्हारे काम कर दें। तो इन्होंने कहा, नहीं अब्बा, आपको पता है कि मैं अपने लिए नहीं साथ करता, मैं अल्लाह के लिए छोड़ता हूँ। नहीं मानी। इसी तरह जब हिजरत की हज़रत अबू बकर ने, तो 4,000 दिरहम थे आपके पास, बाप ने मना किया कि ना लेके जाओ, लेकिन ये लेके। तो जहाँ देखा जाए कि दुरुस्त चीज़ है उसको मान लिया जाए। फरमाया, वत्तवी सबील मन अनाब, और पैरवी करो इसके रास्ते की जो झुके मेरी तरफ, जो मेरी तरफ मायल हो। ये कोई उस्ताद भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, अच्छा मशवरा देने वाला भी हो सकता है। ये बड़ी कड़ी अदालत होती है वैसे, एक तरफ माँ बाप हों और दूसरी तरफ दीनदार हों, यानी एक तरफ उस्ताद से सीखी हुई कोई बात है जिस पे अमल करने को दिल चाह रहा है, और दूसरी तरफ माँ बाप की कोई रिवायात में लिपटी हुई बात है। बहुत कम लोग ऐसे मौक़ों पे इंसाफ कर पाते हैं। का बात उसकी मानो जो वत तभी सबील अमन अनाब इलैया। हर माँ बाप अल्लाह की तरफ नहीं बुला रहे होते औलाद को, वो तो कहेंगे हाय छोड़ो। एक ख़ास हद तक हमारे माँ बाप हमें पसंद करते हैं दीन पे आता देख कर, थोड़ी सी दूर आगे हम जाएँ तो वो हमें पकड़ कर फिर खींचना चाहते हैं। कहा नहीं, क्यों अल्लाह की मानो या अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की मानो, इसलिए कि तुम इलैया मरजिउकुम, तुम्हें आना भी तो हमारी तरफ है। फ़ाउनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर मैं तुमको खबरें दूंगा जो तुम अमल कर रहे थे। पता क्या चला? नबी की मान लो, घर घर की ये कहानी थी, आग लगी हुई थी अल्लाह के नबी पर, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि ये औलादों को बदतमीज कर देते हैं, ये आगे आके बोलते हैं अब हमारे, ये कौन सा दीन है कि माँ बाप की बात ना मानो। तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, मन अनाब इलैया, अगर माँ बाप मेरी तरफ झुके हुए हैं तो सबसे पहले तुम भी उनके पीछे लगो। तो तुमने सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पे चलना जिन पर इनाम है। जो भी रसूल के अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है उसके पीछे चलते जाओ। अनाब का लफ्ज़ नौब से है, नून वाव बा इसका रूट है। मुनीब लफ्ज़ बीसी से है, तौबा और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना। बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं कि माँ बाप के साथ प्यार और मोहब्बत बहुत करते थे लोग, लेकिन बात अल्लाह की मानते थे। मोहम्मद बिन सीरीन के बारे में आता है कि माँ के शौक का ख्याल रखते, नरम लिबास खरीदते उनके लिए, ईद के लिए अपने हाथ से कपड़ा रंगते अपनी माँ के लिए, ऊंची आवाज़ से ना बोलते, ऐसे बोलते जैसे कोई राजदारी का अंदाज होता है। इसी तरह वैस करनी, जिनको खैरु ताबईन कहा जाता है, ये नबी सल्लम के दौर में थे लेकिन आपको देख नहीं सके थे, मिल नहीं सके आपको ईमान की हालत में, क्योंकि माँ की खिदमत करते थे। इधर माँ का इंतकाल हुआ, इन्होंने सोचा चलता हूँ अल्लाह के नबी को मिलने, और उधर अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लम अबू उमर फारूक को कह कर गए कि देखो, करण कबीले का एक शख्स उवैस नाम का आएगा, तो उसको सलाम कहना और उसको दुआ के लिए कहना। कहा, अल्लाह के नबी पहचानूंगा कैसे? कहा, उनकी कलाई में बर्स का निशान होगा। और वाकई फिर हज़रत उमर को जब ये मिलने आए, तो हज़रत उमर ने ये सारे काम किए, उनसे दुआएं ली, उनसे किया। तो आप देखिए कि इनकी बातें थी, जहाँ तक जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, बातें करनी है, लेकिन जहाँ दूसरी बात होगी कि अल्लाह की बात को छोड़ दिया जाए, वहाँ नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी माँ तो आपके बचपन में फौत हो गई, लेकिन आपकी रज़ाई माँ थी, आप उनकी खिदमत खातिर कैसा करते थे। जेराना का मुकाम था, गोश्त बट रहा था, एक औरत आई, उसने चादर फैलाई तो आपने उसको बहुत दिया, आपने बड़ी उसकी इज्जत की, अपनी चादर बिछा कर उसको बिठाया, पता चला कि वो आपकी रजाई माँ थी। तो लिहाजा इस तरह की बहुत सारी बातें मिलती हैं। तो माँ ना हो तो फिर किसकी माँ ने? हदीस में आता है कि अल खालतु बिमंजिलतु उम्मन, के खाला जो होती है ये माँ के दर्जे की होती है। तो यहाँ आप देखिए कि दो बुनियादी असूल जो हैं हमें पता चल गए कि किस तरीके से माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करना है। और इसके बाद अब कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो इसी को फॉर्म करेंगी, लेकिन हम यहाँ पे तिलावत सुनेंगे।
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم